होशे अध्याय आठ, होशे अध्याय आठ पद एक। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वो उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरा घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। परमेश्वर फिर शिकायत कर रहा है, एक तो उन्होंने उसकी वाचा को तोड़ा, दूसरा उन्होंने उसकी विधियों का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी कि वो उनका परमेश्वर रहकर उन्हें आशीष देगा, यदि तुम इन बातों को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारी उपज को बढ़ाऊंगा और तुम्हें पृथ्वी पर वृद्धिमान करूंगा। परमेश्वर उन सब आशीषों का उल्लेख करता है जो उन्हें मिलेगी, परंतु तब जब वो उनका परमेश्वर ठहरेगा, अर्थात जब वे केवल यहोवा ही की आराधना और सेवा करेंगे। यही उनके साथ बंधी हुई परमेश्वर की वाचा थी और यही आशीषों का आधार था। कहने का अर्थ यह है कि उनका परमेश्वर के साथ संबंध वाचा पर आधारित था, परंतु उन्होंने इस वाचा को तोड़ दिया था। पुराने नियम में परमेश्वर ने अनेक वाचाएं बांधी थी। परमेश्वर ने आदम के साथ वाचा बांधी थी जो आदम ने तोड़ दी। परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंशजों के साथ वाचा बांधी थी, उन्होंने भी उस वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने इसराइल के साथ वाचा बांधी थी, उन्होंने वाचा तोड़ी थी। परमेश्वर ने कलीसिया के साथ नई वाचा बांधी थी। इब्रानियों की पुस्तक का लेखक लिखता है कि ये एक उत्तम वाचा है। जब इसराइल ने वाचा तोड़ दी तो हमारे लिए क्या आशा रह गई? हम कैसे सोच सकते हैं कि हम उनसे अच्छे हैं? हमारे साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी वह उनकी वाचा से उत्तम है। उनके साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी वह उनकी आज्ञाकारिता पर आधारित थी। यदि तुम इन बातों को करोगे तो जीवित रहोगे। हमारे साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है वो मसीह यीशु की विश्वास योग्यता के द्वारा है, और वो मसीह में और उसकी विश्वास योग्यता में मेरे विश्वास पर आधारित है। मनुष्य चूक गया, परंतु परमेश्वर नहीं चूकता है। इसराइल के साथ बंदी परमेश्वर की वाचा टूट गई क्योंकि इसराइल ने उसकी शर्तों का उल्लंघन किया, परंतु मेरे साथ बांधी परमेश्वर की वाचा नहीं टूट सकती क्योंकि ये परमेश्वर द्वारा अपने वचन के पालन करने की विश्वास योग्यता पर आधारित है। परमेश्वर ने मुझे ये प्रतिज्ञा दी है कि यदि मैं उसके पुत्र में विश्वास रखूंगा तो मुझे अनंत जीवन प्राप्त होगा। ये वाचा महिमा से पूर्ण है। मुझे उसके पुत्र में विश्वास रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। मुझे केवल परमेश्वर और उसकी विश्वास योग्यता में विश्वास रखना है, ना कि धार्मिकता और नियमों और विधियों पर, परंतु मसीह यीशु के लिए मेरा प्रेम और निष्ठा, या यूं कहें कि उसकी विश्वास योग्यता में मेरे लिए किए गए उसके काम में और उसमें मेरे विश्वास के आधार पर। अतः इसराइल ने नियमों का उल्लंघन किया। प्रेरित पौलुस कहता है, व्यवस्था तो अच्छी है, समस्या व्यवस्था के साथ नहीं थी क्योंकि वो तो पवित्र थी, न्यायोचित थी, भली थी। परमेश्वर की व्यवस्था में तो कोई बुराई नहीं थी। व्यवस्था इसलिए बुरी प्रतीत होती है कि हम कहते हैं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। हमारा दृष्टिकोण कुछ ऐसा है कि मानो व्यवस्था बुरी है या अधर्मी है। नहीं, वो तो न्यायोचित और पवित्र है। मीखा अध्याय 6 पद 8 में कहता है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। यहां 8:3 में परमेश्वर कहता है, इसराइल ने भलाई को मन से उतार दिया है। यहां भलाई का अर्थ है व्यवस्था की बातों को, परमेश्वर के नियमों को भुला दिया। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था में बुराई नहीं, बुराई तो हम में है, क्योंकि व्यवस्था आत्मिक है और हम देहिक है। दाऊद कहता है, भजन संहिता 1:1-3 पद, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही ठट्टा करने वालों की संगति में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। क्योंकि वो भली है, इसलिए वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी कि समाज का आधार बने, कि मनुष्य सहभागिता में रहे, कि आपको एक आनंददायक और संतुष्ट परिपूर्ण जीवन का आधार प्राप्त हो। व्यवस्था में तो कोई बुराई नहीं थी, परंतु उन्होंने उसका उल्लंघन किया, वरन उसका परित्याग किया। होशे 8:2, वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इसराइली लोग तुझे जानते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें नहीं जानता। होशे 8:3-4, परंतु इसराइल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। उत्तरी राज्य में जनता अपना राजा स्वयं चुनती थी। यरोबाम परमेश्वर की इच्छा से राजा नहीं बना था। परमेश्वर की इच्छा तो दाऊद और उसके वंशजों को सिंहासन पर बैठाने की थी। वहां हत्याओं का सिलसिला चलता रहा और राजवंश बदलते रहे। हत्याओं के कारण वो बड़ी अव्यवस्था हो गई थी। होशे 8:4 में आगे लिखा है, वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में, मेरी स्वीकृति लिए बिना, उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे नाश हो जाएं। उन्होंने अन्य देवताओं की सेवा और उपासना आरंभ कर दी थी। परमेश्वर को उनसे यही मुख्य शिकायत थी। होशे 8:5, तेरे बछड़ों को, उन्होंने सामरिया में एक बछड़े की स्थापना की थी और कहा, यही वो परमेश्वर है जो उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया था। होशे 8:5-6, हे शमरोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? ये इसराइल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वो परमेश्वर नहीं है। इस कारण शमरोन का वो बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। परमेश्वर उनके देवताओं पर दंड की भविष्यवाणी देता है। होशे 8:7, वे वायु बोते हैं, उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़कर मूर्ति पूजा करके, वाचा तोड़कर, परमेश्वर के नियमों को तोड़कर वायु बोई थी। होशे 8:7 में आगे लिखा है, वे भावंडर लवेंगे। विकासवाद का सिद्धांत बहुत नुकसान कर चुका है। मनुष्य को एक जानवर के तुल्य बताया जाता है। इस कारण विदेशों में शिक्षकों को विद्यार्थियों से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी होती है। होशे 8:7 में आगे लिखा है, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं। हमने ड्यूवे वाटसन और हक्सली दर्शन शास्त्रियों के सिद्धांत के प्रभाव में आकर व्यक्ति के जीवन को सर्वोपरि महत्व देने का सिद्धांत अपना लिया है, जिसके अनुसार मानव इस अनुकूल विश्व में अकेला है। वो अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी तथा अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। इस प्रकार अच्छे बुरे का भेद को चुनौती दी जाती है और भलाई के विश्वव्यापी आधार का परित्याग किया जाता है, उसमें परमेश्वर का परित्याग किया गया है। मनुष्य को सर्वोपरि महत्व देने का सिद्धांत हमें एक दूसरे से अलग करता है। वो हमारा सामान्य आधार हटा देता है। वो मुझे विशाल जगत में अकेला कर देता है, क्योंकि मेरे जैसे अन्य कोई नहीं है, मेरे जैसे दृष्टिकोण किसी और का नहीं है। इस प्रकार मैं नितांत अकेला रह जाता हूं, और अब मुझे अपने मानवीय आधार से आरंभ करना है, अर्थात मानववाद से। अब मुझे पूरे संसार की व्याख्या अपनी समझ से करना होती है और उनके साथ आधारहीन सामंजस्य स्थापित करना होता है, जिसमें ना तो उचित है और ना ही अनुचित है। सब कुछ मेरी भावनाओं से संबंधित होता है कि मेरा अनुभव क्या कह रहा है। ये मुझे निराशा में ले जाता है। खेत नहीं रहेगा, वरन होशे अध्याय 8 पद 7 में आगे लिखा है, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा। शारीरिक अभिलाषा का जीवन खोखलापन उत्पन्न करता है। देहिक अभिलाषाएं संतुष्टि प्रदान नहीं करती है, इसकी लालसा बढ़ती ही जाती है। इसमें आटा नहीं है, केवल भूसा है। आप उसे खा लेंगे, परंतु वो पौष्टिक नहीं है, उसमें निरार्थकता है। होशे अध्याय 8 पद 7 और 8, ना उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इसराइल निकाला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। दो दिन के लिए परमेश्वर द्वारा त्याग दिए गए, इसलिए अन्य जातियों के मध्य वास कर रहे हैं, परंतु तीसरे दिन वे परमेश्वर द्वारा संभाले एवं उठाए जाएंगे। होशे अध्याय 8 पद 9 से लेकर 12 तक, क्योंकि वे अशूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गदा झुंड से भिचुट के रहता है। एप्रेम ने यारों को मजदूरी पर रखा है, यद्यपि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखें तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहराने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराए समझते हैं। मनुष्य जब भी परमेश्वर के नियमों का त्याग करता है, वो समस्या में पड़ जाता है। होशे अध्याय 8 पद 13 और 14, वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वो उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे, क्योंकि इसराइल ने अपने कर्ता को भुलाकर। ये कैसा दुखदायी और त्रासदीपूर्ण आरोप है कि मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को भूल गए। होशे अध्याय 8 पद 14 में आगे लिखा है, क्योंकि इसराइल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है, परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे।